From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday afternoon session of the 187th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general
officers. Adikario mese su nege hai. Bonneville distribution dwara is prashant ko janta sewa ke roop mein purti kiya gaya tha. Is karyakram ka koi bhi punarpadan abhilekhan pratilekhan ya anya istemal bina likhit anumati ki mana hai. Pradhan Henry B. Ayring girjagar ke pratham adhyakshata ke pratham salahkar is sabha se sanchalan karenge. Brothers and sisters, we welcome you. Bhaiyo aur behno, hum Yeshu Masih ke girjagar antim dinon ke santo ka 187th varshik mahasammelan ka shanivar sham ki sabha mein tumhara swagat karte hain. President Thomas S. Munson ne mujhe kaha ki main is sabha ka sanchalan karu. Hum un sabhi ka swagat karte hain jo yahan upasthit hai ya jo dusre madhyam television, radio aur internet से भाग ले रहे हैं. हम उसी तरह उन सभी का स्वागत करते हैं हम जो दुनिया भर के कई भागों के स्टेक केंद्रों में होने वाले कार्यों के देख रहे हैं. इस सभा का संगीत हम ट्रमेंटन गार्लन और फील्डिंग यूटा स्टेक के एक परिवार के सदस्य से बने हुए संगीतों का द्वारा प्रदान किया जाएगा. ऑर्गन पर जेसिका ली गिल्बर्ट और बॉनी गुडलव के निर्देशन में इस सभा का शुरुआत गायक मंडली इसे गाने द्वारा शुरू करेगी. होम कैन बी हेवन ऑन अर्थ. फिर एल्डर बॉन्जी खीज जो 70 के द्वारा प्रार्थना की जाएगी.
Yeah. Our Father in heaven.
हमारे प्रेम पिता परमेश्वर. हम अपने सर झुकाकर आपको धन्यवाद देते हैं और आभारी है आपके पुत्र के लिए और उसके कार्य के लिए और बलिदान के लिए और उनकी और हम आभारी है थॉमस एस मॉन्सन जो हमारा भविष्यवक्ता है. आप अपना आशीष उन पर अपना उंधे लें और उनको तंदुरुस्त रखें और हम आभारी है जो हमने संदेश अभी सुना है सुबह को और हम चाहते हैं कि आप हमारे हृदय को खोलें कि अब हम जो सुनेंगे और कि हम उसे समझें और हम उनको निभाएं जो हम सुनेंगे और आप हम पर अपना आशीष उंधेलें ताकि हम सभी को पहुंच सके जो आपके इंतजार में है और तैयार है और ये सब हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन.
प्रधान डीटर एफ उक्टर प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार अब गिरजाघर के महाअधिकारियों और 70 केंद्र के समर्थन के मत को बतलाएंगे, जिसके बाद केविन आर जर्गेंसन गिरजाघर के ऑडिटिंग विभाग के निदेशक वार्षिक सूचना को पढ़ेंगे. उसके बाद प्रार्थना प्रथम अध्यक्षता के क्लॉक ब्रुक पी हेल्स होंगे जो गिरजाघर के 2016 के साल का स्टैटिस्टिकल सूचना को बतलाएंगे. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रधान मॉन्सन ने मुझे गिरजाघर के महाअधिकारियों सत्रों के क्षेत्र और महासहायक अध्यक्ष सत्र के रूप तुम्हारे सामने समर्थन करने के कहा है. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉन्सन को यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के भविष्यवक्ता पैगंबर और प्रतिकर्ता और प्रधान के रूप में समर्थन करें. हेनरी बेनियन आयरिंग को प्रथम अध्यक्षता के प्रथम सलाहकार और डीटा फ्रेडरिक उगदव को प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार के रूप में जो सहमत है वो प्रकट करें. जो असहमत है अगर कोई तो प्रकट करें. प्रस्तावित किया जाता है कि हम रसल एम नेल्सन को 12 देवदूतों के प्रसाद के प्रथम नियुक्त करें और उसे प्रसाद के सदस्यों को रसल एम नेल्सन, डेलिने चोक्स, रसल एम रसल बैलर्ड, रॉबर्ट डी हेल्स, जेफरी आर हॉलैंड, डेविड हे वेडनर, क्विंटन एल कुक, डी टॉड क्रिस्टेफसन, नील एल एंडरसन, रोनल्ड ए रैसबन, गैरी ई स्टीवनसन और डेल जी रेनलन को समर्थन दे जो सहमत है कृपया प्रकट करें. जो असहमत है उसी तरह दिखलाएं. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम 12 देवदूतों को प्रथम अध्यक्षता के सलाहकारों को भविष्यवक्ता पैगंबर और प्रतिकर्ता के रूप में समर्थन करें जो सहमत है कृपया प्रकट करें. जो असहमत है अगर कोई उसी तरह से प्रकट करे. हम एल्डर ब्रूस डी पोर्टर के सेवा आभार प्रकट करते हैं जो 2016 दिसंबर 28 को गुजर गया था. हम बहन सुजन पोर्टर और उनके बच्चों और नाती पोतों से अपना प्रेम और हृदय से शोक प्रकट करते हैं. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम एरिया 70 के टेलर जी गोडोय और जॉन सी पिंगरी जूनियर को उन्हें सेवा मुक्त स्थान प्रदान करें जो हमारे साथ भाइयों के सेवा के लिए आभार को अभिव्यक्त करने की इच्छा करते हैं कृपया प्रकट करें. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम आंतरिक धन्यवाद के साथ बहन लिंडा के बर्टन, कैरोल एम स्टीफन्स और लिंडा एस रीस को महासहायक संस्था के महाअध्यक्षता को स्वामित्व करें. हम इसी तरह सहायक संस्था के जनरल बोर्ड को भी मुक्त करते हैं जो हमारे साथ बहन की सेवा के लिए आभार को अभिव्यक्त करने की इच्छा करते हैं कृपया प्रकट करें. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम सेवा मुक्त करें बहन जीन बी बिंगम प्राइमरी जनरल प्रेजिडेंसी के पहला सलाहकार और बहन बॉनी एच गॉर्डन दूसरे सलाहकार से, जो इन बहनों के सेवा के लिए आभार को अभिव्यक्त करने की इच्छा करते हैं, प्रकट करें. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम नए महाअधिकारी सत्रों के समर्थन करें टेलर जी गोडोय, जोनी एल कोक, एडलसन डी पोला बरेला, जॉन सी पिंगरी, ब्रायन के टेलर और टेनियला बी वाकोलो. जो सहमत है कृपया प्रकट करें, जो असहमत है प्रकट करें. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम समर्थन करें जीन बी बिंगम को रिलीफ सोसाइटी जनरल प्रेसिडेंट, शेरन एल यूबैंक को पहला सलाहकार से, रने आई अबुटो को दूसरे सलाहकार से. यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि हम बॉनी एच कोडन को पहला सलाहकार प्राइमरी जनरल प्रेजिडेंसी में और क्रिस्टिना बी फ्रेंको को दूसरे सलाहकार प्राइमरी जनरल प्रेजिडेंसी से समर्थन करें. जो सहमत है कृपया प्रकट करें, जो असहमत उसी तरह दिखलाइए. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम इन क्षेत्रीय सत्रों को समर्थन करें. लुई आर Abizu, David A. Benaklaza, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Budge, Luciano Cascardi, Ting Jong Cheng, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, Jose Luis del Grueso, Alexandra A. Drakiov, Ed Raymond Egbo, Carlos R. Fusco Jr., Jorge A. Garcia, Gary F. Gissel, Guillermo E. Gardia, Marcel Goye, Jose Hernandez, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lekias, John A. McCune, Thomas S. Merdiga, Arthur J. Miranda, Ellie K. Munger, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Rasband, Carlos G. Ravio Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe, or Moisey Benello Weber. जो सहमत है प्रकट करें, जो असहमत उसी तरह दिखलाइए. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम महाअधिकारी क्षेत्रीय सत्रों और महाअधिकारी प्रधानों का समर्थन करें, जैसे संगठित किया गया है. जो सब सहमत है प्रकट करें, जो असहमत कोई करते हैं. मत को लिखा गया है और जो असहमत है किसी भी सुझाव से कि अपने स्टेक अधिकारियों से समर्थ करें. भाई और बहनों, धन्यवाद गिरजाघर के नेताओं के लिए हमेशा तुम्हारे विश्वास और प्रार्थना करें. अब हम नए महाअधिकारियों सत्रों और नए सहायक संस्था की महाअधिकारियों को रोस्टर में अपनी सीट लेने के लिए आमंत्रित करते हैं. जानकारी के
President Monson always says it's a long walk. Thank you, sisters. Thank you, brethren. As a matter of information,
जानकारी के मामले में बहन फ्रेंको वर्तमान में अपने पति के साथ अर्जेंटीना में मिशन की सेवा कर रही है और अधिकार रूप के जुलाई में उनकी वापसी पर उनकी सेवा शुरू कर देगी. गवर्नेंस के रूप में केविन आर जैगन चर्च ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे. इसके बाद ब्रुक पी हेल्स जो 2016 के लिए गिरजाघर के स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट पढ़ेंगे. यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों का संतों का प्रथम अध्यक्षता के लिए प्यारे भाइयों, जैसे प्रतिकरण द्वारा निर्देशन किया गया है डॉक्टर एन कवनन के भाग 120 में दसवा हिस्सा के बंटवारे का परिषद, जिसमें प्रथम अध्यक्षता 12 देवता के परिषद और बिशपरी की अध्यक्षता शामिल है, गिरजाघर का धन के खर्च का अधिकार देता है. गिरजाघर विभाग धन के खर्च स्वीकृति दी हुई बजट नीतियों गिरजाघर ऑडिटिंग विभाग परिणाम पत्र पर पेशवा जो शामिल है और गिरजाघर के अन्य विभागों स्वतंत्र है. ऑडिट के समावेश से गिरजाघर ऑडिटिंग विभाग का यह विचार है कि सभी सामान को लेकर प्राप्त हुए योगदान किए गए खर्च और गिरजाघर के समर्थन 2016 वर्ष के दर्ज और इस्तेमाल किया गया है. नियमित गिरजाघर बजटों नीतियों और कार्य विधियों के अनुसार किया गया था. गिरजाघर अपने सदस्यों को सिखलाया गया रिवाज पर चलता है. बजट में जीकर सम्मान पूर्वक पेश किया गया है केविन आर जोगनसन. प्रथम अध्यक्षता ने यह स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट निकाला है गिरजाघर के बढ़ती और पर्व पर दिसंबर 31st 2016 तक के लिए. कुल मिलाकर 3,266 डेज, साथ में 421 मिशंस, 556 जुलाई और 30,304 वार्ड्स और ब्रांचेस. गिरजाघर में कुल सदस्य 15,882,417 था. 2016 में 109,246 नए बच्चों का नाम दर्ज हुए थे, जिसमें से 240,131 धर्म परिवर्तित हुए थे उस साल के. दिसंबर 31st को 70,946 पूरे समय का प्रचारक और 33,695 गिरजाघर सेवा प्रदान करने वाले प्रचारक का गिरजाघर भर में. दो मंदिरों को फिर से समाप्त हुआ 2016 के दौरान. प्रोविसरी सेंटर सपोरो जापान फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया, फोर्ट कॉलिंस कोलोराडो स्टार वैली वायोमिंग और हार्टफोर्ड कनेक्टिकट मंदिरें. दो मंदिरों को फिर से समर्पण हुआ सुबह फीजी और फ्राइबर्ग जर्मनी. साल के अंत में जितने मंदिर जारी थी वो 155.
Thank you, brethren.
धन्यवाद भाइयों. गायक मंडली, अब आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड और हाउ विल दे नो गाकर सुनेंगे. संगीत के बाद हम 12 देवदूतों के परिषद के एल्डर्स रॉबर्ट डी हेल्स और जेफरी आर हॉलन को सुनेंगे.
How will they know the ones for whom we care? That's What does it mean to be a disciple?
हमारे प्रभु यीशु मसीह के चेला होने के क्या मतलब है? एक चेला हो है जिसने बपतिस्मा लिया है और अपने ऊपर उद्धारकर्ता के नाम लेना और उनके पीछे हो लेना चाहता है। एक चेला कोशिश करता है उनकी तरह बनने को मरणशीलता में उनके आज्ञाओं का पालन करके, जैसे एक शिष्य अपने गुरु के तरह बन जाता है। कई लोग चेला शब्द को सुनते और सोचते हैं उसका मतलब पीछा करने वाला है, मगर सच्चा चल पालन है वो बनना। इसे हमें सुझाव मिलता है गुणों को सिर्फ पढ़ना और करना नहीं है। चेले ऐसे जीते हैं कि मसीह का विशेषता उनका पहचान बन जाता है, जैसे एक कपड़ा जिसमें धार्मिक चित्र बने हो। देवदूत पीटर के निमंत्रण को सुनो कि उसे कैसे उद्धारकर्ता का चेला बनना है। सभी तरह का ज्ञान यत्न करते विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर बेचारे की प्रीति और बेचारे पर प्रेम बहते जाओ। जैसा तुम देख सकते हो, निजी चेल पालन का चित्र वाले कपड़े को बनने के लिए एक ही धागा नहीं लगता। उद्धारकर्ता के समय में कई लोग थे जो अपने जीवन के एक और दूसरे रूप में धार्मिकता बनते थे। वो चुनी हुई आज्ञाकर्ता को अमल कर रहे थे। उदाहरण के लिए उन्होंने सबत पर काम का करने के आज्ञा का पालन किया, पर उद्धारकर्ता का मेहनत किया कि उसने पवित्र दिन पर चंगाई की। उन्होंने अपनी भरंती में से कुछ दान दिया जो उनको जरूरी नहीं था। उन्होंने उपास किया तो उदास चेहरों से। उन्होंने प्रार्थना किया और सिर्फ इंसान को दिखाने के लिए। यीशु ने कहा, वो अपने जबान से मेरे करीब आते हैं पर अपने मन से मुझसे दूर रहते हैं। ऐसा पुरुष और महिला शायद एक खास गुण का गुनिया क्रिया में माहिर होंगे, मगर अपने दिल में उनके जैसा नहीं होते। इनका बारे में यीशु ने कहा, उस दिन बहुत सारे मुझे कहेंगे, प्रभु प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और मेरे नाम से बहुत अचंभे का काम नहीं किया? तब मैं उसने खोल कर कह देंगे कि मैं तुमको कभी नहीं जाना। उद्धारकर्ता के गुण जैसे हम समझते हैं कोई लिखी बात नहीं है करने के लिए या कोई प्रचय जिस में टिक किया जाए। वो अति आवश्यक व्यवस्थाएं हैं एक दूसरे से जुड़े हुए जो प्रभावशाली ढंग से हमारे अंदर बढ़ते हैं। अन्य शब्दों में हम एक मसीह जैसा वैसा पार कर की और भी पाते हैं। दूसरे पीटर और डॉक्ट्रिन कवेनेंट भाग 4 में हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास का धन्यवाद है। हम अपने विश्वास का मात्रा जान जाते हैं ये देख के कि उसे हम क्या कर पाते हैं। प्रभु ने वादा किया, अगर तुम मुझे में विश्वास करोगे तब मेरे निमित्त जो आवश्यक होगा। कर्म बिना धार्मिक जीवन के बिना हमेशा विश्वास व्यर्थ है। चल पालन को जागृत करने में वास्तव में विश्वास व्यर्थ है। और इस तरह पीटर बतलाता है, अपने विश्वास पर सद्गुण बढ़ाओ। ये सद्गुण या पवित्र से बड़ा है। ये नाम और शरीर की सफाई और पवित्र है। सद्गुण शक्ति भी है। जब हम विश्वासीय ढंग से सुसमाचार के जीते हैं, हमारे पास शक्ति रहेगा और सोच एहसास और क्रिया में धार्मिक रहना। हमारे मन पवित्र आत्मा के प्रभाव और मसीह के ज्योति ज्यादा गर्म करने लेंगे। हम मसीह में सिर्फ अवल बोल और कर्म से नहीं सम्मिलित होते हुए अपने व्यक्ति में भी। पीटर आगे कहता है अपने शतगन पर समझ बढ़ाओ. शतगन भरे जीवन जीने से हम हमारे स्वर्ग के पिता और उनके पुत्र के को एक खास तरीके से जानते हैं. यह समझ निजी गवाही है, निजी अनुभव से उत्पन्न हुआ. यह समझ है जो हमें बदलता है ताकि हमारा ज्योति उनके ज्योति की बनता है और हमारा शतगन उनके शतगन के लपता है. हमारे शतगन भरे जीवन से हम वो यात्रा करते हैं. मैं विश्वास करता, मैं जानता हूँ. पीटर हमें प्रेरित करता है, समझ पर संयम बढ़ाओ और संयम पर धीरज. संयम रखने वाले चेलों को नाते हम एक संतुलित और अटल तरीके से सुसमाचार को जीते हैं. हम अपनी शक्ति से अधिक तेज जीते हैं. हर दिन हम बिना डरे आगे बढ़ते हैं. इस तरह से संयम रखने से हमारा धीरज और प्रभु में भरोसा बढ़ता है. इसलिए हम शांत रहकर जान सकते हैं कि वो ही परमेश्वर है. जब हम आपत्ति का सामना करते हैं, हम पूछते हैं, आप मुझसे इस अनुभव से क्या सिखलाना चाहते हो? हमारे मन में उनके योजना का लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ते हैं. न सिर्फ सब इससे कर पर धीरज से कर और अच्छी तरह. पीटर सिखलाता है, ये धीरज हमें भक्ति की ओर ले जाता है. जैसे पिता हमारे अपने बच्चों के साथ धीरज बरकते हैं, हम एक दूसरे के साथ धीरज बरकते हैं. हम औरों के चुनने की शक्ति में खुश होती है और उस मौके पर जो हमें नियम पर नियम बढ़ने देता है एक संपूर्ण दिन की तरह. सैन्य पर धीरज से और धीरज पर भक्ति से हमारा प्रकृति बदलता है. हम बेचारा पाते हैं जो सभी सच्चे चेलों का पहचान है. अच्छे समर्थन की तरह हम रास्ता नंग कर हम किसी को मदद करते हैं जिसे ज़रूरत है, भले वो हमारे दोस्तों में से नहीं है. हम उन्हें आशीष देता है जो हमसे बैर करता है. हम अपने शैतान वालों के साथ अच्छाई करते हैं. क्या कोई गुण ऐसे ज़्यादा भक्ति या मसीह जैसा है? मैं गवाही देता हूँ कि कोशिश हम करते हैं हमारे उद्धारकर्ता के चलन बनने के लिए हमें बढ़ती देता है जब तक हम उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर लेते. ये प्रेम मसीह के एक चेहरे का पहचान है. यदि मैं मनुष्य और स्वर्ग दूतों के बोलियां बोलूं और प्रेम का रखूं तो मैं तंत्रता हुआ पीतल या कान कटा हुआ मजरा हूँ. और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूँ और जब पेड़ों और सब प्रकार के गांव क्या समझूँ, वो विश्वास आशा और प्रेम जो है जो हमें परमेश्वर के कार्य को योगना बनता है. पर अब ये तीनों स्थाएँ पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है. भाइयों और बहनों, आप पहले से भी ज़्यादा हम कुछ समय का चेला नहीं बन सकते. हम सिर्फ एक ही दूसरे सिद्धांत पर चेला नहीं बन सकते. हमारे जितने विश्वतन मसीह में विश्वास का परिणाम है, वो भी जिनके बारे में आज बातें की है, सभी अवश्य है अंतिम दिनों में मजबूत बने रहने के लिए. इसी मसीह के सच्चे चेलन बनने के लिए जब हम उत्सुकता से मेहनत करेंगे, ये विषातें हमारे अंदर आती आवश्यक बढ़ती देने वाली और मिलक मजबूत देंगी. हम किसकी देखने और ना देखने पर दोनों समय ईमानदार रहेंगे. हम परमेश्वर के प्रति उतनी भी भक्तिप्रद रहेंगे बाहर समझ में और अकेले में भी. मैं गवाही देता हूँ कि अब उद्धारकर्ता का चेला बन सकते हैं. चेलापन उम्र, लिंग या नस्ल से ताल्लुक नहीं रखता। हमारे अपने चेलापन से हम अंतिम दिन संत के रूप में मिलकर मजबूती लेंगे हमारे दुनिया भर का भाइयों और बहनों को आशीष देने के लिए। अब वो समय है अपने आप से फिर से उनका चेला बनने का वादा करने का पूरे लोगों से। भाइयों और बहनों, हम सबको उद्धारकर्ता के चेलन बनने की नियुक्ति मिली है। ये सम्मेलन तुम्हारा मौका बने। प्राचीन काल की तरह उनके पास अपने पूरे हृदय के साथ आना आरंभ करो। ये उनका गिरजाघर है। मैं अपना खास गवाही देता हूँ कि वो जीवित है। वो हमें भक्तिप्रद और बहादुर चेले बनने के आनंद खोज में आशीर्वाद दें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Surely, it must have been a day.
सच में ऐसा होगा आज दिन।
In Salt Lake City today.
Salt Lake City में आज.
That led Elizabeth Hewitt to say.
Elizabeth Hewitt को भेजा गया और जब उसने पूछा बोला था कि मेरे प्राण में आज धूप है.
More glorious and bright than glows in any.
और ज्यादा मानता और ज्योति कोई और भी धरती के आसमान से कि यीशु मेरा ज्योति है. सभी नोट पर खुशी के साथ कि आश्चर्य पुराना मसीह यीशु भजन बिना मुस्कुराए गाना गया ही नहीं जा सकता है, परंतु मैं एक आजाद भाषण करता हूं कि तारा चाहता हूं और उसके एक लाइन को अनुवाद करता हूं जो उन दिनों में मदद करेगा जब हमें गाना मुस्कुराना मुश्किल लगेगा और शांति भरे खुशी के पल अब हाँ नहीं सकता। अगर एक पल के लिए तुम दूसरों से खुशी भरे संगीत को सुन ना सको, मैं चाहता हूँ कि इस यीशु भजन के लाइन को ध्यान से सुनो जो आश्वासन देती है। संगीत जो ना गा नहीं सकते वो यीशु सुन नहीं रहा है। परमेश्वर के बच्चे की तरह हम जो सच्चाई को झेलते हैं इस भरे दुनिया में कुछ दिनों में, मुश्किल दिनों में, जब हमारे विश्वास और हिम्मत को पारखा जाता है, ये मुश्किलें आती हैं क्योंकि हमें में ही कुछ कमी है, दूसरों में कमी या जीवन में ही कुछ कमी। परंतु जो कुछ भी कारण हो, हमें पता चल वे हमें हमारे खुशी और आभार को दिखलाते नहीं, तो हम उस समय क्या करेंगे? एक चीज के लिए हम देवदूत पॉल के सलाह को स्वीकार करते हैं और आशा करते हैं कि हमें कभी देखना ना पड़े। उसके लिए विनम्रता हो। उन पलों में जब हमारे खुशी इतना कम हो जाता है कि हम कुछ जान ही नहीं पाते, कुछ पल के लिए हमें शांत रहना होगा और दूसरों को सरलता से सुनना, हमारे इर्द गिर्द के संगीत की महिमा से शक्ति प्राप्त करें। हम में से कई है जो विश्वास को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आत्मा निर्भरता बढ़ रहा है और हमारे संगीत में महान सुधार होगी। किसी और शक्तिशाली के ज्यादा अच्छे आवाज के साथ काम करके वही होता है जब धार्मिक चीज से के साथ कार्य है। हमें खड़ा होना चाहिए शारीरिक तौर से उद्धारकर्ता और दुनिया के मुक्ति दादा के साथ जो सही तरह से अपने विश्वास को दिखलाता है। हम फिर उसके क्षमता से हिम्मत जुटाते हैं वह समझने के लिए जो हम बतला नहीं सकते और उनके संगीत से आशा करते हैं अपने खुद से मुक्ति को बनाने के लिए। सच में ये है जब प्रभु करीब है कि मुझे शक्ति का एहसास है मेरे हृदय में, महान खिते में। उन दिनों में जब हम सभी से अलग हो सोच और फैसले महसूस करते हैं, थोड़ा अलग जो हम दूसरों में देखते या सुनते हैं, मैं हम से पूछना चाहता हूँ, खास करके गिरजाघर के युवा से, कि याद रखो कि या दिव्य योजना में है कि परमेश्वर के गायक मंडली की सभी आवाजें की एक तरह नहीं होते। उस समय कई सोप्रानोस और अल्टोस, बेरिटोन्स एंड बेसेस होते हैं, अच्छे संगीत जो बनाए जाते हैं। दो महान अंतिम संतान की महिलाओं के एक पुत्र से एक लड़की लाइन को बतलाना है। सभी परमेश्वर के लोगों को गायक मंडली में स्वीकार किया जाएगा। जब हम अपने क्षमता को कमजोर करते हैं या गलत चिन्ह लगाते हैं कि कोशिश करते हैं जिन एक लालची परंपरा से होता है और किसी भी तरह जानता मध्यान सच्चे तौर से समझ लेते हैं, हम लोगों से बीच के गुण और अंतर को खो देते हैं जो परमेश्वर ने बनाया था जब उसने दुनिया में कई चीजें बनाई। या इसलिए नहीं कहा जाता कि इस दिव्य गाने में सभी लड़का या लड़की जो से गाना शुरू कर सकते हैं, व्यक्तिगत गाने में जोर की आवाजें पारवर्ता नहीं होती है और गायक मंडली में सुधार होने चाहिए। हमारे आज के कार्य के लिए मैं चेताव को इस्तेमाल करता हूँ, परंतु जब हमें एक बार दिव्य तौर से धुन और दिव्यता के संगतों को स्वीकार किया है तो जो दुनिया के बनने से पहले बनता है, हमारे स्वर्ग पिता को हमें अपने खुद के तेरे की तरह अपने आप में विश्वास करो और उसमें विश्वास करो। अपने आप को कम मत समझो या अपने काम को कम। जरूरी सबसे जरूरी कोरस, मैं अपने कार्य को छोड़ मत, क्यों? क्योंकि तुम अनमोल हो। हर एक की आवाज की कम हमारे महान मनुष्यता गायन मंडली के सभी दूसरे गायक को कमजोर कर देता है। उनकी कमी के साथ संगतों में जाने माने नहीं महसूस करते हैं या गिरजाघर के जाने माने नहीं, परंतु जैसे मैं तुम सभी को कार्य को जो मुश्किल हो करना पर विश्वास रखने को कहता सो हूँ, मैं तुमसे या कई कारणों के लिए बतला रहा हूँ। मैं दूसरे तरह के संगीत ये लट रहा हूँ जो होना चाहिए परंतु अभी गाया नहीं गया है। जब मैं दुनिया में आश्चर्य तौर से पैसों की असमर्थता देखता हूँ, मैं स्मिथ श्रीमती हेविथ के साथ आशीर्वाद जो परमेश्वर मुझे अभी दे रहे हैं, खुशियों जो ऊपर बनाया गया है कि संगीत में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ या करूस को पूरी तरह विश्वास से गया नहीं जो सकता है जब तक हमने गरीबों की मदद नहीं किया है, एक के मूल जरूरतों को पूरा करने के पैसे की कम, एक शराब है जो हमेशा हर साल और पीढ़ियों के बाद पीढ़ियों से शरापित हो रहा है या शरीर की नष्ट करता है। मैं भी खुशी और आभारी महसूस करने में मुश्किल का सामना कर रहा हूँ जब हमारे इर्द गिर्द के कई दिमागी और शारीरिक बीमारियों को झेल रहे हैं या दूसरे स्वास्थ्य के दुर्बल रुकावटों से, दुर्भाग्य से या मुश्किलें कभी कभी कई अलग तरह के देखभाल करने वाले की होने पर भी होती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम परमेश्वर के बच्चों को उनके स्थितियों को दूसरों से बतलाएं बिना ही सहने नहीं देंगे और कि हम उनके क्षमता को पाएंगे और गीतों को सुनेंगे। और किसी दिन मैं आशा करता हूँ कि दुनिया भर के लोग साथ में कार्य को करेंगे बिना कोई कुल या जाति के, बतलाए हुए बंदूक कलंक और उपलब्ध इंसान की लड़ाइयों को सुझाने के तरीके नहीं है। स्वर्ग से बतलाया गया है कि हम से बदलाव का वह तरीका जिससे यह स्थिति पूरी तरह से तभी सुलझेगी जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उनके आज्ञाओं का पालन करेंगे। इस तरह वो एक आखिरी दरवाजा खुलेगा शक्तिशाली ढंग से एक दूसरे को पड़ोसियों की तरह प्रेम करना। भविष्यवक्ता ईथा ने सिखलाया है कि हमें अच्छे दुनिया की आशा करना चाहिए। इस सोच को पढ़ाए हुए 1000 सालों बाद मोरोनाय, जो लड़ाई और झगड़े से थका था, ने बताया सबसे अच्छा तरीका है उस दुनिया के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार हमेशा रहेगा। हम बहुत ही आभारी हैं कि इस तरह के मुश्किलों में यहाँ पर समय समय पर एक दूसरी तरह की संगीत हम पाते हैं जो हम ना नहीं सकते, परंतु एक दूसरे कारण से ऐसा ही समय एहसास बहुत ही बड़ा और व्यक्तिगत है, इतना पवित्र कि वे बतलाए नहीं जा सकते या नहीं चाहिए। कोडेलिया का अपने पिता के लिए प्रेम की तरह, जिसके पुत्र उसने कहा, मैं अपना प्रेम पूरी तरह से बतला नहीं सकता हूँ, मैं अपने एहसास को पूरी तरह से दिखला नहीं सकता हूँ। जैसे कुछ पवित्र मिला हो, ये एहसास सरलता से बतलाया नहीं जाएगा, महान धार्मिकता से बतलाया जाता है। यीशु से किए हुए प्रार्थना की तरह निफाइट बच्चों ने किया, जो इस स्थिति की गवाही ने लिखा है, आँखों ने कभी देखा नहीं, ना कहीं कान ने नहीं सुने, महान और आश्चर्य चीजों जो हमने देखा है और सुना यीशु पिता को पिता बतलाए। कोई भी भाषा नहीं बतला सकता, ना कि कोई इंसान लिख सकता है, ना कि इंसान के हृदय में इतना महान और आश्चर्य चीजें हो सकता है जो कि हम दोनों ने यीशु को बतलाए हुए देखा है और सुना। यह सभी पवित्र समय कहा रहता है, क्योंकि बतलाने में अगर आसान लगे शायद उसकी इज्जत नहीं मिल जा देख सकते। भाई और बहनों, हम मरणशीलताएं रहते हैं कई संगीत के साथ जो हम गा नहीं सकते या समझते नहीं, परंतु मैं हम सभी से गुजारिश करता हूं कि हमेशा और विश्वास बन कर रहो जहां हम हमेशा के लिए उस सब से गाने को याद रख पाएंगे। सच्चे प्रेम के संगीत दुर्भाग्य से सभी प्रायश्चित का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कमरा है उनके लिए जो अलग भाषा बोलते हैं, अलग परमात्मा जो मानते हैं और दूर स्थानों पर रहते हैं। यहाँ पर अविवाहित शादीशुदा बड़े परिवार वाला और बे औलादों के लिए कमरा है। यहाँ पर उनके लिए कमरा है जो अपने विश्वास पर एक बार सवाल उठाए थे, और उनके लिए कमरा जो अभी भी अपने विश्वास पर सवाल उठाते हैं। यहाँ पर दूसरे लिंग के आश्रित होने वालों के लिए कमरा है। यहाँ सभी के लिए कमरा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं, जैसे भी बहुत ही जरूरी स्तर का हो व्यक्तिगत चालन चलन में। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे गए हुए है संगीत की धुन की तरह होती है, जरूर हमें उनको निभाने की इच्छा मिल सकता है। दिव्य प्रेम और विश्वास पश्चाताप और दया, सच्चाई और माफी के आज्ञाओं से यहाँ पर गायक मंडली में सभी के लिए स्थान है जो यहाँ होना चाहते हैं। आओ जैसे भी तुम हो। एक प्यार करने वाला पिता हम सब के सबसे कहता है, परंतु वह साथ में कहता है, यहाँ ना सोचो कि तुम बदल नहीं सकते हो। हम मुस्कुराते और याद करते हैं कि परमेश्वर उससे ज्यादा बनाएंगे जितना हम सोचते नहीं। इस महान संस्कृत में उसका योजना है हमारे मुक्ति के लिए। मैं आशा करता हूं कि हम उसके मार्ग के विमर्शता से चलेंगे और कार्य को करेंगे हमने जो किया नहीं, जब तक हम वे कर नहीं सकते कैरल्स राजा के लिए। फिर एक दिन जाएगा कि हमारा सबसे परस्तीना संगीत कहता गया, हम स्वर्ग के सेना के साथ गाएंगे, शोर मचाएंगे, होजाना होजाना परमेश्वर और महिमा के लिए। जब यीशु अपने लोगों के साथ आएगा, मैं गवाही देता हूं कि वह घंटा आएगा कि परमेश्वर हमारे अंत पिता एक बार फिर धरती पर अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा, एक बार राजाओं के राजा की तरह, हमेशा के लिए अधिकारी की तरह। मैं गवाही देता हूं कि यह उसका पुनर्स्थापित गिरजाघर है और सभी इंसान के लिए उसका सुसमाचार के शिक्षमों और सिद्धांत बचाने वाली घड़ी की तरह है। जब उसका संदेश सभी देशों सभी घरों में पहुंचेगा, यीशु मसीह मुस्कुराए हुए चेहरे में नजर उठाएंगे और जरूर से आनंद ज्योति होगा उस दिन आत्मा में। इस वादा की ये घंटे आने की मैं बड़े ख्वाहिश से प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
The congregation.
सभा अवगायक मंडली के साथ मिलकर Go forth with faith को गाएंगे। संगीत के बाद हम 70 के एल्डर्स गैरी बी सेबिन और वैलरी बी कोडोन से सुनेंगे। उसके बाद 12 देवनियों के वरिष्ठ के एल्डर्स नील एल एंडरसन भाषण देंगे।
This is the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Several years ago, our young granddaughter ran up to me.
कई साल पहले मेरे जवान ने थी मेरे पास दौड़ते हुए आए और कहा, नानी, नाना, देखो मैंने कितना गोल बनाया आज गेम में। मैंने सोच के जवाब दिया, बहुत अच्छा सारा। फिर उसकी माँ ने कहा, सुनकर, स्कोर 2-1 था। मैंने यहाँ नहीं पूछा कि कौन जीता। सम्मेलन प्रतिदिन प्रकट होने के लिए और कभी कभी दोबारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक कार रेंटल कंपनी है जिनके एक जीपीएस होती है। अगर जो जीपीएस में आप गलत डाल देते हैं तो जीपीएस नहीं बोलता कि आपने गलत किया है वो, लेकिन एक आवाज़ आती है कि राउट को फिर खोज रहे हैं और पॉसिबल हो तो घुमा लीजिए गाड़ी को। इजिकल हमसे आश्चर्य वादा करता है, परंतु यदि दुष्ट जान अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करें और नए धर्म करता है, वो मरेगा नहीं लेकिन वो जीवित रहेगा। उनके जितने अपराध हो वो मिटा दिया जाएगा। ये कितना शानदार वादा है कि उसको माफ़ी दे दी जाएगा। हमें उस आदमी की तरह नहीं बनना है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा है कि एक एनवलोप में पैसा देखता है और लिखता है उसमें कि कृपा बंद हुए पैसे जो मैंने पिछले टैक्सेस भुगता था। पीएस, अगर इसके बाद मेरी अंतर्मा अभी भी मुझे परेशान करती है तो मैं आपको बाकी भेजूंगा। ये करने का तरीका नहीं है। हम इससे देखने के लिए नहीं रोकते हैं कि हम किस प्रकार हो सकते हैं न्याय से बचने के लिए। प्रभु को दिल और एक मन की इच्छा की ज़रूरत है। हमारे पूरे दिल से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम उद्धारकर्ता का पालन करने के हमारे वादे के प्रतीक के रूप में मेरी पूरी तरह से डूबे होते हैं, अधिक से नहीं। जब हम पूरी तरह से प्रतिबंध और अधेर होते हैं, परमेश्वर हमें अपने शक्ति प्रकट करता है और आशीर्वाद देता है। जब हम गुनगुने होते हैं कि केवल अधिकत प्रतिबंध, तो हम पूरे परमेश्वर के कुछ महान आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। वो शांत था। सच्ची कहानी, वो घंटों को तक रुका रहता है क्योंकि वो कम के 5 मिनट को बचाने की कोशिश कर रहा था। हम शायद सोचते हैं कितना पागल है, कौन कभी ऐसा करेगा। अच्छा, हम हर समय अधिक खतरनाक तरीके से काटते हैं जब हम ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं और हर दिन अधिकार करते हैं और हर दिन सुषमाचार को हराने के लिए समय नहीं लेते हैं, तो हम असल में हमारी आध्यात्मिक सोने वाला भाग को खोलने से इनकार करता है। ना केवल आज निकल जाएगा, लेकिन हम असुरक्षित को हो सकते हैं और आध्यात्मिक रूप से ठंडा हो जाना चाहिए। जब हम अपने वादों से आत्मसत और संभावित खतरों से अनजान रहते हैं, हम परिणाम के लिए जिम्मेदारी है। प्रभु ने हमें सलाह दी है कि अपने आप को सावधान रहना ताकि आनंद जीवन के वचनों को ध्यान पूर्वक ध्यान से सके। और उसने आगे बतलाया, उसका खून हमें साफ नहीं कर सकता है अगर वे मुझे सुनेंगे नहीं। सही में ये बहुत सरल है। आनंद अंदर तेतरों की तरह, जब हम आधे या अंदर नहीं होते हैं, या पर स्टार वॉर्स भाषा में कहते हैं, या पर कुछ नहीं है जो ठीक नहीं है। हम परमेश्वर की आज्ञा के साथ नहीं होते हैं, इसलिए खुशियों के प्रतीकी के साथ नहीं है। अजाया ने कहा, परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल में और कुछ उजलता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। जब हम पूरी तरह से पश्चाताप करेंगे और प्रभु का निर्भर रहेंगे, हमें शक्ति प्राप्त होगा। जब एक छोटे बच्चे की तरह विनम्र और विश्वास रखना होगा। जीवन के अनुभव के से अलग कहा मिलेगा। जॉब ने प्रतक किया धार्मिक लोग से मार्ग पर पकड़ के रहेंगे और जिसके पास शुद्ध हाथ होंगे वह मजबूत और मजबूत होगा। यह टेनेसी था जिसने लिखा, मेरा शक्ति 10 से बराबर है क्योंकि मेरा हृदय है। प्रभु ने सलाह दिया, पवित्र स्थान पर खड़े रहो और हिलना मत। जब मेरे पिताजी 90 के थे, हम एक एयरपोर्ट पर और थे और उसे पूछा कि क्या मैं उसके लिए व्हीलचेयर लाऊं। उसने कहा, नहीं गैरी, शायद जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब। और फिर उसने कहा, इसके अलावा अगर मैं चलने से थका हुआ हूं तो मैं हमेशा दौड़ सकता हूं। अगर हम रास्ते के अंदर ठहरे नहीं जिस पर हम अभी चल रहे हैं, फिर तो हमें दौड़ने की ज़रूरत है। हमें शायद अपना रास्ता दोबारा तय करना पड़ेगा। हमें शायद उसे यू टर्न मारना पड़ेगा। हमें और भी अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा और भी अच्छी तरह से प्रार्थना करना पड़ेगा। या तो ज़रूरी चीज़ों नहीं है पर अमल ना दे ताकि हम उस चीज़ों पर दे। ज़रूरी है हम दुनिया भर की चीज़ों को भूलना होगा ताकि आनंद जीवन पर अनमल रहे। मेरे पिताजी को यह समझ में आया जब वह वर्ल्ड वॉर टू के समय नेवी में था। वहाँ महान और बड़े इमारत में थे जो उसके सिद्धांतों का मजाक उड़ाते थे। उसके दो जहाज पर का साथी डेल मेडॉक्स और डॉन डेविडसन उन्होंने देखा लेकिन मजा नहीं किया। उन्होंने पूछा, सभी शेबिन तुम दूसरों से इतने अलग क्यों हो? आपके पास ऊंची नैतिकें हैं और शराबी तंबाकू या गाली नहीं बोलते लेकिन आप शांत और खुश हैं। मेरे पिताजी के संभाव से अलग था जो वे मोमेंट्स के भरे में था जानती थी। और मेरे पिताजी उन दिनों जहाज पर का साथी को शिक्षण और बपतिस्मा दिया। डेल के माता पिता बहुत दुखी थे और उसे चेतावनी दिया कि वो गिरजा में शामिल हुआ और वो अपने प्रेमिका मेरियो लाइफ को खो देगी। लेकिन वो प्रचारकों इसे बोलने पर प्रचारकों से मिली और उसने बपतिस्मा लिया। लड़ाई के खत्म होने पर प्रधान हिबर जी ग्रांट ने प्रचारकों की नियुक्ति किया जिसमें शादीशुदा आदमी थे। डेल और मेरियो ने फैसला किया कि वे डेल के सेवा करने जाने चाहिए कि वे पहले बार माँ बनने वाली थी। आखिर में उन्होंने या बच्चे हुए, 3 लड़के और 6 लड़कियां। सभी नव मिशन पर गए थे। डेल और मेरियो लाइफ बाद में गए सेवा करने के लिए जिन्होंने अपने खुद के 3 मिशन को पूरा किया। जब हम अपने पिताजी के खासगात में मध्याह्न को देख रहे थे हमें जेनिफर रिचर्ड्स के एक पत्र मिला। दूसरों जहाज पर की लड़कियों में एक थे डॉन डेविडसन। उसने लिखा, तुम्हारी सच्चाई ने हमारे जीवन को बदल दिया है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि बिना गिरजाघर के हमारे जीवन कैसे होता। मेरे पिताजी ने सुषमाचार प्यार करते हुए अंत तक इस जीवन जीवित रहने की कोशिश की है। अच्छे व्यक्ति के लिए प्रभाव को मापना कठिन है, प्रत्येक व्यक्ति को अंदर कहते हुए हैं। मेरे पिताजी और दो जहाज पर थे साथी उनके बातों को नहीं सुनते चाहते थे जो महान और बड़े इमारतों में जिन्होंने किराना की उंगली उठाया था जानते थे। देवदूत पॉल ने हमारे दिन को देखा था। तिमोथी ने लिखा, इन्हें छोड़कर कितने लोग फिर कर बकवाद की ओर बैठ रहे हैं। यहाँ पर आज दुनिया में बहुत ही बेहतर शोर मचा रहे हैं। सौभाग्य से हमें पिता है कि विश्वासियों के लिए कहता आनंद होगा जब हम अंदर ठहरे होते हैं और हमारे पास पूरी तरह से महान आशीर्वाद है, सब कुछ परमेश्वर से प्रेम रखते हुए उनके लिए अच्छा काम करते हैं। एदर नील मैक्सवेल ने कहा, मत डरो, सिर्फ सही से जियो। मेरे सुरजी बीवायू ने, सुसासुर जी बीवायू में बीवायू फुटबॉल थे, वो गेम्स नहीं देखना था, लेकिन वो नहीं जानता था क्या होगा गेम्स में, लेकिन वो गेम्स को रिकॉर्ड कर रहा रहता था। जब वो बीवायू जीत जाता था तो वो गेम्स को देखता था, लेकिन वो क्योंकि वो जानता था कि अंत में क्या होगा, और अगर जो वो हारते थे तो वो जानता था कि ये हार जाएंगे, तो वो नहीं देखता था उस गेम को। वो जानता था कि अंत में क्या होगा। तो हमारे साथ क्या है, अगर जो हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या होगा। परमेश्वर के जो वादा है वो सच्चा है। अगर जो हम पोल की तरह अगर जो हम रहते हैं सुनते हैं, परमेश्वर ने जो हमारे लिए भेजा है वो हमें मिल सकता है। भाई और बहनों, किसी ने कल पाप नहीं किया है, हम किसी भी अन्य कार्य के सुधर आवश्यक बन सकते हैं और आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम बहादुरी से अंदर से खड़े रहे और अंदर ठहरे। हमें स्वर्ग के पिता का योजना और उसके पुत्र की मिशन हमारे उद्धारकर्ता में सच्चाई और हिम्मत से रहेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
एक महाअधिकारी के रूप में बुलाने जाने के बाद मैं अपने परिवार के साथ कोस्टा रिका के छोड़कर सॉल्ट लेक शहर गया अपने पहले कार्य को करने के लिए। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में मुझे दूसरे जाति और परंपरा के आश्चर्य लोगों को भेंट करने का आशीर्वाद मिला। उनमें कई है जो तरह लैटिन अमेरिका के देशों में पैदा हुए थे। मैं देखा है कि पहले पीढ़ी के लोग स्पेनिश बोलते हैं उनके मुख्य भाषा के रूप में, और संजय करने के लिए उतना प्राप्त अंग्रेजी बोलते हैं। दूसरे पीढ़ी जो यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए हैं, ये छोटे उम्र में आए थे और यहाँ पर स्कूल गए, बहुत ही अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं और शायद कुछ स्पेनिश जो अजीब लग रहा था और पूरी तरह से सही नहीं था। और आखिरी तीसरी पीढ़ी के द्वारा स्पेनिश अपने पूर्वजों की मूल भाषा खो जाती है। इसी कहते हैं भाषा को जाना, भाषा खो जाता है जब परिवार दूसरे देश चले जाते हैं जहां वे उन्हें मात्रा भाषा प्रमुख नहीं है। ये सिर्फ स्पेनिश में नहीं होता है परंतु दुनिया भर के लोगों में भी होता है जब मात्रा भाषा के बजाय दूसरे को बोला जाता है। नेफाय भी मोमन धर्मशास्त्र के एक भावोक्षिक्त अपने पिताओं के मात्रा भाषा को खोने पर चिंता था जब वे वादा किया कि स्थान पर जहां खो तैयार हो रहा था। नेफाय ने लिखा, देखो ये परमेश्वर का एक विवेक है कि हम इन अभिलेखों को प्राप्त करते हैं जिसके हम अपने पूर्वजों के भाषा को अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखेंगे। लेकिन नेफाय ने भी ऐसे प्रकार की कि भाषा को खोने के लिए चिंतित थे। दूसरे वेश में उसने आगे कहा, और हम उनके लिए एक वचन को भी सुरक्षित रखेंगे जो कि पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से कहा गया है, जो कि हमें परमेश्वर की आत्मा और समर्थ द्वारा संसार का अनुर के वंतरण समय तक दिया जाता है। आज मेरे समतान में मैं नूर देने चाहता हूँ, गौर देना चाहता हूँ। कोई विशेष संसारिक भाषा नहीं बल्कि एक आनंद भाषा है जिसे हमारा परिवारों में संसारचित किया जाना चाहिए और कभी खोया नहीं। मैं यीशु मसीह का सुसमाचार के भाषा की बात करता हूँ। सुसमाचार की भाषा में मेरा मतलब है कि हमारे भौष्विकता की सभी शिक्षाओं, हम इन सभी शिक्षाओं के लायक रहेंगे और हमें सच्चे परंपरा पर चलना चाहिए। डॉक्ट्रिन कवरेंस में प्रभु ने गिरजाघर के कई प्रमुख संदेश को आमंत्रित किया है। नेवल के विटनी के साथ अपने परिवारों के मार्गदर्शन देना चाहिए। प्रभु ने कहा, मेरा सेवक नेवल के विटनी कोई दंडित करने की आवश्यकता है, मैं अपने परिवार को मार्गदर्शन देना चाहिए और ये देना चाहिए कि वे अपने घर में अधिक खुशहाल और चिंतित होने की नाता और हमेशा प्रार्थना करे। ये उनके अपने स्थान के अलग है। 12 दिवदेश के परिवार एल्डर डेविड ए बेडना ने चेतावनी दी है कि कमजोर सुसमाचार शिक्षण और घर में मॉडलिंग एक शक्तिशाली कर्म है कि गिरजाघर के कई पीढ़ों के परिवारों को तोड़ रहा है। हम अंत में कह सकते हैं कि शक्तिशाली शिक्षण बहुत ही जरूरी है हमारे घरों में सुसमाचार को रखने में, और उसके लिए सावधानी और शक्ति की जरूरत है, व्यक्तिगत तौर से करने की जरूरत है। हमें कई बार आमंत्रित किया गया है कि धर्मशास्त्र की शिक्षण हमेशा परिवार और व्यक्तिगत तौर से करने की जरूरत है। रोज धर्मशास्त्र को सिखाने में कब होगा? ये होगा जब माता पिता हाथों में धर्मशास्त्र लेकर प्रेम से परिवार को साथ में शिक्षा के लिए आमंत्रित करेंगे। ये बहुत ही मुश्किल है कि किसी भी तरह से इस शिक्षण को होता देखे। पिताओं और माताओं, इस महान आशीर्वाद को खोना मत, इतना इंतजार मत करो कि देर हो जाए। दूसरा, घर में मजबूत मॉडलिंग। एक भावश्वक्ति ने लिखा कि एक मात्रा भाषा को बचाने के लिए आपको अपने बच्चों के लिए भाषा को जीवित करने की आवश्यकता है। हम अपने भाषा को मानोजीत करते हैं जब हमारे शिक्षण है। जब मैं जवान था, मैं चिट्ठियों की द्वारा मेरे पिता की कारखाने में काम किया। सबसे पहले सवाल मेरा पिताजी हमेशा मेरे से तमाता मिल करता था, तुम अपने पैसे से साथ क्या करोगे? मुझसे जवाब पता था और कहता, अपने दवा हिस्सा बारा और मिशन के लिए बचाना। लगभग 8 साल तक उसके साथ काम करने के बाद हम हमेशा वही सवाल पूछते थे। मेरे पिताजी ने जाना कि उससे मुझे 10वां हिस्सा भरना सिखला था और वहाँ नहीं जाना था कि ये खास सिद्धांत में है, सिर्फ एक हफ्ते में सीखा था, मैं हफ्ते बतलाता हुआ। मुख्य अमेरिका की राजधानी लड़ाई के कुछ कार्यों के काम मेरे पिताजी का कारोबार बंद हो गया। वो लगभग 2000 पूरे समय के मुलाजिम से अब सिर्फ 5 सिलान वाले बच्चे थे जो हमें घर के गैराज में जरूरी काम करते थे। उन मुश्किल समय के दौरान एक दिन मैंने अपने माता पिता को यहाँ वार्तालाप करते हुए देखा कि वे 10वां हिस्सा भर या बच्चों के लिए भोजन लाए। रविवार को मैं अपने पिताजी के साथ ये देखा कि गया कि वे क्या करेगा। हमारे गिरजाघर शब्दों के बाद मैंने उसके लिफाफे ले गया और उसमें 10वां हिस्सा को भरते हुए देखा। ये सिर्फ शिक्षण का एक भाग था। मेरे लिए ये सवाल बने रहे और था कि हम क्या कहेंगे। सोमवार के शब्द है कि कुछ लोगों के हमारे द्वारा घटराया। जब मैंने खोला, उन्होंने मेरे पिताजी के लिए पूछा, मैंने उसे बुलाया और जब वह आया मिलने वाले ने उन्हें जल्द से जल्द अवश्य इसराइल आदेश के बारे में बताया. उन्होंने उसे बताया कि कार्य इतना ज़रूरी थी कि वे पहले ही पैसे को देंगे. उस दिन में दसवें हिस्से के बारे में ये सिद्धाओं के शिक्षा और आशीर्वाद की अनुसार करते हैं. एक और तरीका भाषा को बदलने या तीसरा परंपरा. एक और तरीका भाषा के बदले या खोए की सकता है जब आय भाषाओं और परंपरा मात्र भाषा शक्ति मिलती है. गिरजाघर के पुनस्थापना के हाल ही में प्रभु ने गिरजाघर की हर सदस्य के प्रधान को अपने घरों में सीखने के लिए आमंत्रित किया. उसने दो तरीके से अपने निमंत्रण को बता. हम अपने घरों में ज्योति और सच्चाई को खो सकते हैं. से बुरा इंसान आता है और अच्छा इंसान को विरोधी के द्वारा ले जाता है. इंसान के बच्चों से हम अपने पिताओं की परंपरा के कर्म. परिवार की तरह हमें किसी भी परंपरा को बचना और जरूरी है जो हमें रविवार के दिन पवित्र रखने को रोकता है या हमेशा घर पर धर्मशास्त्र को सीखने और प्रार्थना करने के. हम अपने घरों में असल चित्र और दूसरे और बुरे प्रभाव से बचना होगा. हमारे दिन की शिक्षा परंपराओं का मुकाबला करने के लिए हम धर्मशास्त्र के हमारे आधुनिक भविष्यताओं की आवाज़ को उपयोग करने की आवश्यकता है और अपने बच्चों को उसकी दिव्य पहचान, उनके जीवन का मतलब और यीशु मसीह के दिव्य मिशन के बारे में शिक्षण. संपत्ति. धर्मशास्त्र में हम कई भाषा को खोने की कई उदाहरण पाते हैं. उदाहरण में अब ऐसा हुआ कि बहुत ही मेरी पीढ़े लोग राजा बेंजामिन की बातों को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब उनके अपने लोगों के बातें की थी तब वे छोटे बच्चे थे और वे अपने पिताओं और परंपराओं पर विश्वास भी नहीं करते थे. और अब अपने अविश्वास के कारण परमेश्वर की वाणी को समझ नहीं पा रहे थे और उनके हृदय भी कठोर हो गया था. भारतीय हुई पीढ़ी के लिए सुसमाचार एक ऐसी भाषा है जैसे उन्होंने नहीं पहचान है और समझ नहीं आया. और जब एक मात्र भाषा को बचने में सवाल होता है, मुक्ति की योजना में बहस किया जाता है. हमारे घरों में सुसमाचार की भाषा को खोने की आनंद पर्यटक. परमेश्वर की बच्चों की तरह हम सभी लोग नहीं एक सही भाषा को सीखने के कोशिश में. जैसे कि एक माँ अपने छोटे बच्चे की साथ दयालु है, हमारे स्वर्ग के पिता हमारे कमियों और गलतियों के साथ धैर्य रखता है. वे हमारे प्रार्थना को पूरी तरह से नहीं करने को समझता और जानता है. सच्चाई से कहा जैसे कि वे शायरी है, वे हमारी प्रशासन सुसमाचार और साधन को सुनने के लिए खुश है. वे हम सच्चे प्रेम के साथ सिखलाता है. इस जीवन में कोई भी कार्य इतना जरूरी नहीं है जितना कि अगर हम प्रभु की सुसमाचार उसके भाषा को सिखलाए. उस समय तक जब कि हम इस बदलाव की ऊंची स्थिर को ना हो जाए जो हमेशा हमारे मातृभाषा है यीशु मसीह के नाम से. आमीन.
कई सालों पहले प्रधान डेविड मके ने अपने एक सुंदर अनुभव को बतलाया जब वो सामोआ की ओर जहाज में जा रहा था. सोते ही उसने स्वपान देखा, कुछ बहुत पवित्र दूर उनके पास. मेरे पास एक सुंदर सफेद शहर है, पेड़ों में स्वादिष्ट फल और सभी स्थान पर फूल खिल गए। एक बड़े संगतों में लोग शहर की ओर बढ़ रहे थे। हर एक ने सफ़ेद सुंदर रोब पहना था। अचानक मेरी ओर नज़र पड़ी उनके नेता पर और मैं देखा पाया कि वह कैसा दिखता था। मैंने एक ही बार उसे उन पे उधारकर्ता की तरह पहचान लिया था। उससे चेहरा में वह महान चमत्कार था। उसके इर्द गिर्द शांति दिव्य थी। प्रधान मके ने आगे बतलाया, शहर उसका आनंद शहर और उनके पीछे चलने वाले लोग शांति और आनंद खुशहाली में वहां पर थे। प्रेसिडेंट मके आश्चर्य में कहा, कौन थे वो कौन है ये लोग? उसने समझाया बाद में क्या हुआ था। ज्यादा जैसे उधारकर्ता ने मेरी सोच को जान लिया था, उसने आगे शिशल में लिखे हुए और इशारा करते हुए जवाब दिखाया। समय ने सोने में लिखा था, ये वो है जो दुनिया से पराजित किया गया है, जो सच में धार्मिक से बदलते थे। कई पीढ़ियों से मुझे व्यक्तित्व याद है, ये वो है जो दुनिया को पराजित है। वह आशीर्वाद जो प्रभु ने वादा किया है उनको दो, जो दुनिया को पराजित करते महान है, वो सफ़ेद कपड़े पहनेंगे और जीवन की किताब में उनका नाम होगा। प्रभु उनके नामों को पिता के सामने और उनके दूतों के सामने लाएगा। हर एक के पास कार्य पूर्ण जीवन में आनंद जीवन को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के संतों के बाहर नहीं जाएंगे। क्या दुनिया को पराजित करना सकता है और आशीर्वादों को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है। ये जो दुनिया को पराजित कर लेते हैं, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पूरे प्रेम को पाते हैं। उसका दिव्य पैदाइश, उसका सही जवाब, जवान उसका महान प्रेषित गेत्सेमनी गोलकोना में ने हम सबको पूर्ण जीवन का आश्वासन दिया है। हमारे सच्चे पश्चाताप से वह अकेला ही काबिल था। हमारे पापों से हमें साफ करने में, हम सबको परमेश्वर के पास वापस लौटने में, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। यीशु ने कहा, खुश रहो, मैंने संसार को पराजित लिया है। बाद में उसने कहा, वह चाहता है कि हम भी दुनिया को पराजित करें। दुनिया जो पराजित करना जीवन में को पराजित करना जीवन में एक भार नहीं होता है चाहिए, परंतु जीवन भर में हमेशा होना चाहिए। तुम्हें आनंद जीवन देता है। इसका शुरुआत हो सकता है जब हम एक बच्चे खेलने सकते हैं हमेशा, जब मैं यीशु तरह मसीह की तरह बनना चाहता हूँ। ये होता है जब एक इंसान नए नियम में उधारकर्ता के जीवन की सीखना जारी रखता है और मोमन की धर्मशास्त्र उधारकर्ता प्रायश्चित की शक्ति के बारे में सीखता है। प्रार्थना पश्चाताप उधारकर्ता के पीछे चलने और उसके महिमा को प्राप्त करने के लिए और भी अच्छी तरह से समझ मिलता है कि हम यहाँ क्यों आए हुए हैं और उनकी तरह बनते हैं। अलमा ने इस तरह बतलाया, उनके हृदयों में एक महान पवित्र हुआ था और उन्होंने स्वयं को बीमार किया और सच्चे और जीवित परमेश्वर में अपना विश्वास बनाया, अंतक विश्वास जो दुनिया को प्रजित कर लेता है। जानते हैं कि वे स्वर्ग पिता के लायक बन जाएंगे। सच्चाई से बदलना और पापों से पश्चाताप करना चेतावनी नहीं है, परंतु बच जाते जैसे पाप झोड़ना तरह लाल है, बर्फ की तरह सफ़ेद। जो दुनियादारी वाले हैं को परमेश्वर की जिम्मेदारियों ने मुश्किल होगा, जैसे कि एक बच्चा अपने माता पिता के घर में बड़े पतियों करता है जब वे शहर में नहीं होते, स्थिति में कुछ हो जाते हैं, उस पल को भूल जाते हैं जब माता पिता 24 घंटों के बाद वापस होते हैं। दुनिया को प्रजित करना पूरा हमारा नहीं है, परंतु एक अकेला व्यक्तिगत लड़ाई जरूरी है हमारे खुद के मुसीबत को करना। दुनिया को प्रजित करना मतलब महान आज्ञा पालन करना है, और तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। मसीह लेखक लिखता है, सी लिवस ने इस तरह बताया, मसीह कहता है, जब सब कुछ मुझे दे दो, मुझे तुम्हारे सभी समय नहीं चाहिए और तुम्हारे सभी पैसा, तुम्हारे सभी काम, मुझे तुम चाहिए। दुनिया को प्रजित करना परमेश्वर का वादा को रखना में शामिल, और हमें बपतिस्मा मंदिर का वादा और हमारे आनंद स्थिति साथी के साथ विश्वास, दुनिया को प्रजित करना है, सेफ्टी प्रभु भोज की ओर निम्रता से ले जाता है, और क्षमा मांगते हुए और उसको याद करने और उसके वादों को निभाने में मदद करता है कि हमारे साथ हमेशा उसकी आत्मा रहे। हमारे सैबत दिन के लिए प्रेम खत्म नहीं होता है जब चैपल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, परंतु एक दूसरे दरवाजा खुलता है कि एक सुंदर रोज के काम से आराम सीखने पर आत्मा और परिवारों और दूसरों को पहुंचने में जिनको हमारी जरूरत होती है, ना कि बच जाए है कि एहसास घर गिरजा घर खत्म हो जाता है आशा के साथ कि टेलीविजन पर फुटबॉल गेम देखने के लिए, उसके पवित्र दिन पर ही रहना चाहिए। दुनिया हमेशा बहकाने और फुसलाने वाली आवाज़ों से भरी हुई है। दुनिया को प्रजित करना उस एक आवाज़ में विश्वास करना है जो चेतावनी, सहारा, आश्वासन, मार्ग और शांति लाता है, ना कि जिस तरह दुनिया देती है। दुनिया को प्रजित करना मतलब है कि खुद को बजाय दूसरों को पर ध्यान देना, दूसरे आज्ञाओं का याद करना, वह जो तुम्हारे बीच सबसे बड़ा है, तुम्हारा सेवक होता है। हमारे साथी को खुशी, हमारे खुद की खुशी जरूरी है। हमारे बच्चों को मदद करना परमेश्वर के प्रेम को जाने के लिए और उसके आज्ञाओं का पालन करने के लिए है। जब हम अपने दुनियादारी की चीज़ों को बांटते हैं जैसे कि जिसको वो ज़रूरी है, और हम अब जब ऊपर की ओर सोचते हैं प्रभु हमें बचाता है और हमें मदद करता है। एक दुनियादारी का इंसान खुद पर ध्यान देता है, घमंड से कहते हुए अपने पड़ोसी के साथ तुलना करना, देखो मेरा मन क्या है, देखो मैं कितना ज़रूरी हूँ। दुनिया आसानी से गुस्सा, बेपरवाह, मुसीबतों, संकटों भरे लोगों से परास्त होने में प्रेम करता है। दुनिया को पराजित करना हमेशा मतलब है कि हमारे पास खुश विश्वास और दुनिया के पसंद नहीं है। उद्धारकर्ता कहता है, यदि संसार तुम्हें बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुम्हें पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते हो तो संसार अपनों से प्रति रखता है। प्रेसिडेंट ने आज सुबह कहा कि यीशु मसीह के चेले दुनिया के लोगों से अलग होते हैं। एक मसीह का चेला चिंता में नहीं होता अगर उसके विश्वास के बारे में का लिखा हुए का अपने फेसबुक पर 1000 लाइक्स नहीं मिलते या कुछ मित्रों से एमचोस भी। दुनिया को प्रेरित करना हमारे ऑनलाइन रहने के चिंता से कम है और हमारे परमेश्वर से ज़्यादा करीब रहना का चिंता होना चाहिए। प्रभु हमें सुरक्षा प्रदान करता है जब हम उनके जीवित भविष्यवक्ताओं और देवताओं को मार्ग पर चलते हैं। प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन ने कहा, दुनिया में चेतावनी, जब हम मंदिर जाते हैं हम और ज़्यादा सभी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं और हर एक बेवकाव को भी हम नए और हिम्मत वाले बन सकते हैं। बढ़ते हुए भयकावे, मुसीबतों और झूठों से दुनिया विश्वासियों को फले से शक्तिशाली धार्मिक अभिनव को अंधका करने के लिए मनाते हैं, बतलाए हुए कि वे पागल हैं। दुनिया को प्रजित करना है जब हम मुसीबत में होते हैं और उस समय हमने उद्धारकर्ता के प्रेम और ज्योति को महसूस किया है। एल्डर नील ए. मैक्सवेल ने एक अनुभव को कहा, मुझे आशीर्वाद मिला है और मुझे पता है कि परमेश्वर को पता है कि मुझे पता है कि आशीर्वाद मिला है। भले ही हम कुछ समय के लिए भूल जाना महसूस करते हैं, हम भूलते नहीं। दुनिया को पराजित करने का मतलब नहीं है कि हम अकेले रहें मरणशीलता के गलत कलेशन और मुसीबतों से बच के सकते हैं, भले वह हमें ज्यादा विश्वास का समझ देते हैं उधारकर्ता के पास जाने में और वह वादों को, भले इस जीवन में पूरी तरह से नहीं होती। दुनिया को पराजित करने से सक्रिय आशा मिलती है कि एक दिन हम अपने मुक्तिदाता के सामने खड़े होंगे और उनके चेहरे को खुशी से देखेंगे और उसकी आवाज को सुनेंगे, आओ हे मेरे पिता के पास, दुनिया में इस राज्य के अधिकार हो जाओ। इस पिछले साल दिसंबर 28 को हमारे प्रिय दोस्त और प्रिय महान अधिकार एल्डर ब्रूस पोर्टर मर गए। वह 64 सालों का था। मैं पहली बार ब्रूस से मिला जब हम ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी थे। वह सबसे अच्छा और होशियार था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी डिग्री प्राप्त करने के बाद रशियन गिरफ्तियों में भी किया। ब्रूस को सोचने और लिखने में महानता प्राप्त हुई जो उस बुरा बन सकता था, परंतु दुनिया के पैसे और वही ने कभी उसका इरादा नहीं बदला। उसका विश्वास यीशु मसीह उद्धारकर्ता पर था, उसके आनंद साथी सूजन, उसके बच्चों और नाती पोतों पर। ब्रूस को पैदाशी किडनी का रोग था। उसका इलाज हुआ था, परंतु उसके उस समय तक किडनी खराब हो चुका था। कुछ समय ब्रूस को 1995 में महान अधिकार घोषित किया गया था। हमने फ्रैंकफर्ट जर्मनी में साथ में सेवा किया था, जहां उसका कार्य रशिया और यूरोप में था। 1997 में एल्डर पोर्टर के जीवन में बदलाव आया जब उनकी किडनी बिगड़ गया था और मरने वाला था। पोर्टर फिर सॉल्ट लेक सिटी वापस आया। 22 सालों की सेवा के दौरान ब्रूस को कई बार अस्पताल में भर्ती किया पड़ा। जीवन 10 ऑपरेशन हुए। डॉक्टरों ने स्थितियों में से सूजन को बतलाया कि ब्रूस रात भर ही मेहमान है, परंतु वह जी गया। ब्रूस डायलिसिस पर था, अपने खून को साफ करने के लिए सेवा 12 वीएस तक। उस समय के ज्यादातर डायलिसिस एक हफ्ते में 5 बार शाम को होता था और 4 घंटों तक इलाज करके वह आकर गिरजा में यीशु मसीह की कार करता था। जब उसका स्वास्थ्य कई प्रस्तुत के आशीर्वादों के लेने के बाद अच्छा नहीं हुआ, ब्रूस आश्चर्य में पड़ गया, परंतु उसके बाद वह हुआ विश्वास करता था। 2010 में ब्रूस को उसके पुत्र डेविड ने एक किडनी दिया। इस समय उसके शरीर ने स्वीकार किया, यह एक जादू था स्वस्थ को पाना। अंत में सूजन को वापस उनके प्रिय रशन में चिंत्र अधिकार की तरह जाना हुआ। 2016 दिसंबर में हमेशा बीमारियों से लड़ने के बाद सॉल्ट लेक शहर के अस्पताल में उसने डॉक्टरों को कमरे से जाने को कहा। ब्रूस ने सूजन से कहा कि उसे आत्मा द्वारा पता चला कि डॉक्टरों से कुछ भी नहीं होगा जो उसे जीवन दे सके। उसे पता था स्वर्ग पिता उसे घर ले जाएगा। वह शांत था। दिसंबर 28 को ब्रूस अपने परिवार के घर वापस चला गया। कुछ घंटों बाद उसके परिवार इर्द गिर्द थे। वह शांति से स्वर्ग घर लौट गया। सालों पहले ब्रूस पोर्टर ने अपने बच्चों को यह शब्द कहा था, गवाही जो मेरे पास है यीशु मसीह की सच्चाई और प्रेम का मेरे जीवन का मार्गदर्शन है। यह आत्मा का साफ जलती हुई गवाही था कि वह जीवित है, कि वह मेरा मुक्तिदाता और दोस्त है सभी जरूरत के समय पर। हमारे चुनौती है उधारकर्ता को जानना और उसमें विश्वास करने से दुनिया के मुसीबतों और बेकावे पर प्रजित करना। हम उसमें विश्वासी सच्चा भरोसा करने चाहिए। ब्रूस डगलस पोर्टर दुनिया को प्रजित किया था। हम सबको ज्यादा कोशिश करना चाहिए हमारे क्षमता से दुनिया जो प्रजित करने में, ना कि भरी पापों को अनदेखा करें कुछ मुसीबतों और गलतियों को झेलते हुए अपने रफ्तार को बढ़ाएं और दयापूर्वक दूसरों की सेवा करें। जब तुम और ज्यादा उद्धारकर्ता में विश्वास करोगे, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि इस जीवन में ज्यादा शांति का आशीर्वाद मिलेगा और तुम एक भरी आनंद नियुक्ति का आशीर्वाद पाओगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
हम आभारी हैं और जब आज शाम को हम भाइयों को याद करते हैं कि 6 बजे माउंटेन डेलाइट टाइम प्रस्तुत का सेशन शुरू होगा। Sunday morning session of conference फिर 10 बजे शुरू होगा। आज सुबह का concluding speaker LDL M. Russell Ballard होगा, Quorum of the 12 Apostles का। उसके टिप्पणियों के बाद choir फिर गाएंगे A Child's Prayer गाकर, benediction फिर Elder Montoya के द्वारा दिए जाएंगे।
My brothers and sisters,
मेरे भाइयों और बहनों, अब ये मेरा काम है कि आपसे बातें करें और आपके काम है सुनो। मेरा लक्ष्य है कि अपना काम तुमसे पहले खत्म करूं। मैं पूरे खत्म करूंगा, मैं पूरा अच्छे से करूंगा। पिछले सालों में मैंने देखा कि जो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा करना चाहते हैं, उनके पास अपने जीवन के लिए एक सपना होता है, लक्ष्य के साथ, ताकि वे अपने सपने को गौर कर सके और फुर्तीला योजना उसे हासिल करने के लिए। अगर तुम जानते हो कि तुम जहां जा रहे हो तो कैसे वहां पहुंचना है, उसके जीवन को अर्थ, इरादा और पुरतने में। जब तक कुछ लोग सीखना नहीं लेते कि एक लक्ष्य मंजिल ये है, 5 अंक है और एक योजना वहां पहुंचने का रास्ता, उनको कठिनाई होती है एक लक्ष्य और योजना के बीच का अंतर जानने में। उदाहरण के लिए, हमारा लक्ष्य हो सकता है कि किसी अपरिचित जगह तक ड्राइव करना, और जैसे अब मैं से कुछ प्यारी बहनें जानती है, हम पुरुष अक्सर सोचते हैं कि हम रास्ता जानते हैं, फिर हम अंत में कहते हैं मैं जानता हूँ, जरूर अगले मोड़ पर है। मेरी पत्नी मुस्कुरा रही थी, है लक्ष्य साफ था मगर मंजिल तक पहुँचने के लिए कोई अच्छा योजना नहीं था। परमेश्वर हमारे स्वर्ग के पिता ने हमें संपूर्ण उदाहरण दिया है लक्ष्य और योजना बनाने का। उसका लक्ष्य है मनुष्य को अमरशीलता और अनंत जीवन दिलाना, और वो उद्धार के योजना द्वारा उसके हासिल करेगा। हमारे स्वर्ग पिता का योजना हमें बताता, फैलाता, सिखलाता, शारीरिक मरणशीलता देता है, जिसके जरिए हम और उनकी तरह बन जाएंगे। हमारे अनंत आत्माओं को शारीरिक देह से ढकना, उन पुत्र प्रभु यीशु मसीह के शिक्षण और आज्ञाओं अनुसार जीना और अनंत परिवार बनाना हमें मुक्त मौका देता है। उद्धारकर्ता के परिश्चित के जरिए हाँ कि हम परमेश्वर के श्रेयता और अनंत जीवन के लक्ष्य को पूरा करें कि उनके बच्चों के उनके साथ रखने उनके सेलेस्टियल राज्य में। बुद्धिमानी से लक्ष्य तय करने के मतलब है कि छोटे समय में खत्म होने वाले लक्ष्य तभी प्रभावशाली है जब उनके जरिए लंबे समय के लक्ष्य को अच्छे से समझ लिया जाए। मेरे विश्वास है कि खुशहाली की जरूरी है कि जानना अपने खुद का लक्ष्य तय करना और अपना योजना बनाना हमारे स्वर्ग के पिता के आनंद योजना के दौरा में। अगर हम इस आनंद मार्ग पर ध्यान देने, हम अवश्य उनकी उपस्थिति में लौटने की योजना रहेंगे, योग्य रहेंगे। हमारे पेशा, पढ़ाई और गोल्फ खेल के लिए भी अच्छा है लक्ष्य और योजना रखना। विवाह, परिवार और गिरजाघर परिषदों और नियुक्तियों के लिए जरूरी है लक्ष्य रखना, खास करके सही है परीक्षण के लिए। मगर हमारे सबसे बड़ा और सबसे लक्ष्य स्वर्ग के पिता के आनंद योजना के लिए उचित होना चाहिए। यीशु ने कहा, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सबसे वास्तव में भी तुमको मिल जाएंगे। लक्ष्य बनाने में जो माहिर है कहते हैं कि लक्ष्य जितना सरल है और सीधा है उतना ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जब हम एक लक्ष्य को एक साफ चित्र सा देखें या एक दो शक्तिशाली और प्रकात्मक शब्द वे लक्ष्य, तब हमारे अंदर सीमा जाएगा और हम जो सोचेंगे और करेंगे को रहा देगा। मैं विश्वास करता हूँ कि दो शब्द है इसे मिलन में, जो परमेश्वर के लक्ष्य और हमारे लिए और हमारे सबसे जरूरी लक्ष्य के प्रतिमक, वो बहुत है और सच्चा पाना है। उनकी उपस्थिति में लौटना और वचन को बनाने के निभाने से जो अनंत आशीर्वाद मिलता है पाना हमारे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हम और है प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ विश्वास रखकर, उनके समर पर पूरा भरोसा करना, लगातार मसीह में आगे बढ़ते हुए आशा की आकांत ज्योति में, और परमेश्वर और सभी मनुष्य से प्रेम रखते हुए मनुष्य से वाणी के पहला प्रेरित रहना और तक संचालित बनने रहना। लिसिफा ने पिता के योजना ने नहीं स्वीकार किया, जैसे हमें मौका मिलता है उनकी उपस्थिति में और उनके आशीर्वादों को पाना। वास्तव में उसने बगावत किया कि हमारे पिता की योजना को पूरी तरह से बदलाना चाहा ताकि परमेश्वर का महिमा, सम्मान और शक्ति उसे मिल सके। इसके कारण उसके और उसके चेलों को परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर किया गया और शैतान बन गया। हाँ, और वो भूत और छूटा का पिता मनुष्य को धोखा देने और आंधा करने के लिए और अपनी इच्छा से उनकी गुमराह करने, जितना भी लोग प्रभु की आवाज़ को नहीं सुनेगा, उनके मरणशील जीवन के पहले के चुनाव के कारण शैतान ना चख सकता ना पा सकता। उसके लिए एक ही चीज बजा है कि पिता के योजना को विरोध करना और वो लक्ष्य और बहकावे देकर जिससे वो समीदा और अत्यंत दुखी को जा उसके तरह। शैतान का योजना अपने दोष योजना को पाना हर व्यक्ति, पीढ़ी, संस्कृति और समाज और तालुक रखता है। वो जोर आवाज इस्तेमाल करता है, आवाजों जो पवित्र आत्मा के छोटी धीमी आवाजों को असुना कर देता है, जिससे हम सब कुछ देख पाते लौटने और पाने के लिए। ये आवाजें उनके हाय जो सुसमाचार को नहीं मानते और इंटरनेट, सोशल और छापे हुए मीडिया, रेडियो, टीवी और फिल्मों का इस्तेमाल करते हैं, अनेकता, हिंसा, गंदी बात, गाली और फुहरता और ऐसे दिखलाते कि हम अनंतता के अपने लक्ष्य के योजना से ध्यान हटा देते हैं। इन आवाज़ों में अच्छे नियुक्त लोग भी होंगे तो मनुष्य के नस्तिक की धोखा में है और जो विश्वास का नाश करना और अनंत नजरिया को हटाना चाहते हैं, उसे जो सिर्फ लौटाना चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में और पाना चाहते हैं कि वे सब जो पिता के पास है। मैंने पाया है कि वादा के आशीर्वाद तक और पाने पर ध्यान धरने के मुझे लगातार खुद के पूछना चाहिए, मैं कैसा कर रहा हूँ। ये अपने आप को इंटरव्यू लेने जैसा है, और अगर ये विचित्र लगे उसके बारे में सोचो। इस दुनिया में कौन तुम्हें खुद से बेहतर जानता है? तुम अपने विचार, अपने चाल चलन, अपने इच्छाओं और अपने सपनों, लक्ष्य और योजना को खुद जानते हो, और तुम ही किसी से बेहतर जानते हो कि लौटने और पाने के मार्ग पर तुम्हारी प्रगति कैसी है। अपने ही खुद से इंटरव्यू के द्वारा मैं एल्मा की पांचवें अध्याय में गहरे सोच से शब्दों को पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, जहाँ एल्मा पूछता है, क्या तुम धार्मिक रूप से परमेश्वर के जन्मे हो? क्या तुम अपने रूप में उसकी प्रचय को पाया है? क्या तुम अपने हृदय में महान परिवर्तन को अनुभव किया? आलमा के सवाल हमें ये दिलाता है हमारे लक्ष्य और योजना में होना चाहिए लौटने और पायो। उद्धारकर्ता को निमंत्रण को याद रखना, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे ज्वारा अपने ऊपर लो, ज्वाटा अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में देन हूँ, और तुम अपने में विश्राम पाओगे। जब तुम प्रभु मसीह यीशु मसीह के शक्ति में अपने विश्वास बढ़ाओगे, हमारे हृदय को विश्राम देंगे और पाप के क्षमा से बिखरे रिश्तों को बहकाओगे और आत्मिक गवाही को चंगाई देने जैसे बढ़ती रोक जाती है। हमें मजबूत और काबिल बनाना मसीह के गुण की अपने अंदर विकसित करने की ली। आने वाले हफ्तों में समय निकालो अपने जीवन के लक्ष्य और अपने योजनाओं पर गौर करने के लिए, और ये तय करो कि क्या ये स्वर्ग के पिता के खुशहाली की महान योजना से मेल कहता है। अगर तुम पश्चाताप कर बढ़ने हैं तो अभी शुरू कर लो। प्रधानशीलता से सोचने के लिए समय निकालो कि आज से बदलाव जरूरी है ताकि तुम परमेश्वर पर ही ध्यान दें। हमें यीशु मसीह के सिद्धांत और सुसमाचार को अपने लक्ष्य और योजना का मुख्य भाग बनाना है। उसके सिवाय कोई अनंत लक्ष्य मुमकिन नहीं है, और हमारे अनंत लक्ष्य को पाने वाली योजना जरूर सफल होंगी। एक और मदद मिलता है जीवित मसीह देवदूत की गवाही से, जो गिरजाघर के बनता गया था January 1, 2000 में। इसका एक कॉपी वहां रखिए जहां देखा सका, और समय निकाल के इस पर हर एक वाक्य पर गौर करो जो मसीह के इस प्रेरित गवाही में उसके खास गवाहों के द्वारा सही किया गया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इसे परिवार दुनिया के लिए एक औपचारिक घोषणा और अक्सर परिवार घोषणा के बारे में बात करते हैं, मगर कृपया याद रखें कि इसे जीवित मसीह के मुक्ति दिलाने के शक्ति के ध्यान में रख कर पड़े। जीवित मसीह के बिना हमारे मन चाहिए अरमान पूरे नहीं होंगे। जैसे परिवार घोषणा बतलाता है, खुशहाली के दिव्य योजना मुमकिन करता है कि परिवार के रिश्ते खबरा से आगे जा सके। पवित्र धार्मिक ध्यान और वचनों जो पवित्र मंदिरों में उपलब्ध है, जिससे लोग परमेश्वर की उपस्थिति और परिवारों के संग आनंद रूप से एक हो सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब जीवित मसीह दुनिया का प्रायश्चित का उद्धारकर्ता और मुक्ति दाता है। इस मिलान में तुम धर्म स्थल में भी ढूंढना, जीवित मसीह में दिए खास सच्चाई के अपने ज्ञान जो प्रस्थिति से जीवित मसीह को पढ़ना, मैथ्यू, मार्क, लुक, जॉन और मोमन धर्मशास्त्र के भविष्यवक्ताओं की गवाही पढ़ने जैसे है। ये उद्धारकर्ता में तुम्हारी विश्वास को बढ़ाएगा और तुम्हें मदद करेगा उनके ध्यान को जब तुम अपनी योजना को कर रहे हो, होकर अपने आनंद लक्ष्य को पा रहे हो। हमारे गलतियों, खामियों, पाटना और पापों के बावजूद यीशु मसीह के प्रायश्चित हमें मौका देता है पश्चाताप करने, वापस लौटने और पाने के लिए तैयार रखने के लिए कि परमेश्वर के वादा किए आशीर्वाद में पिता और पुत्र के साथ हमेशा सबसे उत्तम स्थान पाने के सेलेस्टियल राज्य में। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, कोई भी मौत से नहीं बचेगा, इसलिए हमारे लंबे समय के लक्ष्य और योजना वो हमारे चाहिए। मैं गवाही देता हूं कि कोई और ऐसा वादा लक्ष्य नहीं है मनशीलता में हमारे स्वर्ग माता पिता और हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत में जीने जैसा, मगर ये सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं, यीशु ये उनका लक्ष्य भी है। वो हमेशा संपूर्ण प्रेम करता है, इतना शक्तिशाली कि हमसे समझ भी नहीं पा रहे हैं। वे पूरी तरह से अनंत तक हम पर ध्यान दिए हैं। हम उनके कार्य में, हमारी महिमा उनकी महिमा है। किसी और चीज से ज्यादा वे चाहता है कि हम घर आए, वापस लौट और आनंद खुशहाली पाए उनके उपस्थिति में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक हफ्ते में हम पाम संडे मनाएंगे जेरूशलम में मसीह के शानदार स्वागत। दो हफ्ते में हम ईस्टर संडे मनाएंगे, उद्धारकर्ता का मृत्यु पर से विजय पाना। जब हम अपने ध्यान उद्धारकर्ता पर देंगे इन दो खास रविवार को, आओ हम उन्हें याद करें और उनके आज्ञाओं का पालन करने के जीवन भर की वादा को ताज़ा करें, और हम गौर से अपने ही जीवन को देखें, अपने लक्ष्य बनाएं और अपने योजना को परमेश्वर की इच्छा अनुसार बनाएं उस तरीके से जिससे हम अपने अनमोल सही भाग को लौटाएंगे और पाएंगे। है मेरा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमेन।
हे हमारे प्यारे पिता, हम बहुत आभारी है इस कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में। हम धन्यवाद देते हैं जो संगीत दिया गया है और ये जो खास गाना गाया गया हुआ है। हम जानते हैं कि आप वहाँ पर हैं और सुन रहे हैं हमारे प्रार्थना को। हम प्रार्थना करते हैं प्रधान थॉमस एस मॉन्सन के और उससे प्यार करते हैं। हम बहुत आभारी हैं और जो जो लोग सेवा कर रहे हैं आपके और जो जिनको रिलीज किया गया है, और हम प्रार्थना करते हैं और उन सभी के लीडरों के लिए जिन्हें नियुक्त किया गया है। हम प्रार्थना करते हैं अपने आपके बच्चे के जिनके ऊपर पीड़ा और दुख है, कुछ लोग जो जो जिनके ऊपर दुख है और घर बिखर गए हैं, और कुछ लोग और वो लोग आपके प्यार में हैं और धार्मिक तूफान से गुजर रहे हैं। हम सब आपके चिल्ड्रन हैं और हम भाई बहन हैं। हम सब लोगों का दिल में बदलाव लाओ ताकि हम आपके ओर घूमें। हम आपसे प्यार करते हैं और हम आपके पुत्र से प्यार करते हैं। हम आपके आज्ञाकारी रहना चाहते हैं और हम ये सब कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
This has been a broadcast of the 187th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a family choir comprised of members from stakes in Tremonton, Garland, and Fielding, Utah. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.